राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 26 अप्रैल 1993 को साय लगभग 4 बजे गीता भवन सर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।
पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण 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 नारायण। कोई किसी के मन में कोई बात आती है पूछने की कहने की सुनने की नारायण नारायण नारायण। बात आई है कि श्रद्धावंतो न सूयंतु मुच्यंते ते भी कर्म में। गीता के सोने में भी लिखा है श्रद्धावान अनुसूज सुनया भी यो नरा। तो श्रद्धावंत शब्द है उसके साथ अनुसूयंत आया है। असूया नाम है दोष दृष्टि। किसी नाम दोष दृष्टि करते हैं उसको असूया करते असूया। तो श्रद्धावंतो न सूयंतो मानो श्रद्धा रखे दृष्टि न करे तो यह जरा विरुद्ध बात पड़ती है। जहां श्रद्धा विश्वास होता है वहां असूया नहीं होती। असूया होती है दोष दृष्टि जहां होती है वहां श्रद्धा नहीं होती। भगवान दोनों कहते हैं जैसे मई सर्वाणी कर्माणी संन्यास्य अध्यात्मो भूतवा युद्ध स्व विगत द्वारा। ये कर्मयोग की बहुत संपूर्ण विधि बताने वाला गीता में एक 30वां श्लोक है। इसलिए कहते हैं ये मेरे मत में दम ये मेरा मत है इसका अनुष्ठान करें श्रद्धा पूर्वक पूज्य बुद्धि से शास्त्रों में गुरु में भगवान में जो विश्वास दृढ़ विश्वास पूर्वक जो श्रद्धा होती मन पूज्य भाव होता है ऐसे ही है उसको श्रद्धा कहते हैं। तो जब विश्वास होता है तो वहां असूया नहीं होती परंतु मनुष्य के एक अपने में बुद्धिमानी का एक अभिमान होता है जानकारी का एक अभिमान होता है समझदारी का एक अभिमान होता है। मैं भी जानता हूँ समझता हूँ मेरे को भी पता है ऐसा भाव रहने से दोष दृष्टि हो जाती है। कभी देखते ये बात तो ठीक है ये कैसे हो गई। रामायण में आया है सुनो तात मायाकृत गुण और दोष अनेक। मायाकृत गुण और दोष अनेक है। गुण यह उदय देखिए गुण क्या है कि गुण दोष दृष्टि न करना ही गुण है और गुण दोष देखना ये अविवेक है। गुण दोष दृष्टि दोष हो गुणस्तु भय वर्जिता भागवत माता ये गुण है ये अवगुण ये गुण है अवगुण ये तो दोष है और गुण यह है उभय ना दोष देखे ना गुण देखे एक परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है, तो ये गुण हो गया। तो गुण दोष जोड़ने, गुण देखने श्रद्धा होती है और दोष दिख जाने से असूया होती है, घृणा होती है, अरुचि होती है, उनके द्वेष तक हो जाता है, ऐसी बात होती है। हम तो इतना गुण जानते थे ये तो ऐसी पोज निकल गई, ऐसा अवगुण देखने से होता है। तो साधक के लिए बहुत आवश्यक है कि दोष दृष्टि न करे। गुण दृष्टि कम हो तो इतनी पाप की बात नहीं है, दोष दृष्टि से नुकसान होता है। जिस बार दोष दृष्टि हो जाती है उसमें प्रेम नहीं होता और वो श्रद्धा भी कमजोर होती है। श्रद्धावंत तो उन्हें सुनी तो दोनों बताया ना, तो दोष दृष्टि रहने से श्रद्धा भी पूरी नहीं होती। ये दोष दृष्टि बहुत खतरनाक एक कपड़े में ऐब है, तो उसे सावधान रहे। संतों ने कहा कि तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, संसार को छुट्टी दे दो, अच्छो करे भलो करे भूलो करे खुद भी करे, नारायण तू बैठ के अपनो भवन गुहार, अपना अंतकरण शुद्ध करो, ये अपने करो, नारायण जो करो भलो बुरो जैसे करे मर्जी जैसे करो। तो गुण रहे उभे देखे ही नहीं, दूसरों के गुणों को देखे ही नहीं, कभी गुण दोष देखे कैसे काम होगा। रामायण में गुण और दोषों का वर्णन पहले ही आता आरंभ में, तो वह आरंभ में क्यों गया, उसका मतलब बताया है कि गुण दोष बिना जाने त्याग और ग्रहण नहीं होता। तो त्याग करने के लिए, ग्रहण करने के लिए गुण दोष देखना है। संग्रह त्यागन बिनु पहचाने, ताते मैं गुण दोष बखाने। गुण दोष बखान करने का तात्पर्य बताते हैं, गुण दोष दृष्टि नहीं है। तो दोनों उस बात से बताया कि दोष वाली चीजों को त्यागो, गुण वाली ग्रहण करो। तो संग्रह त्यागन बिना पहचाने, बिना पहचाने संग्रह नहीं हो सकता, त्याग नहीं हो सकता, इस वास्ते गुण दोष मैंने कहा है, ये गोस्वामी महाराज कहते हैं। तो अपने ग्रहण करने के लिए गुणों को लें, दोष अपने में दिखे वो दूर कर दे। तो गुण दोष दृष्टि के लिए नहीं कहा है, वो साधक को अपनी सावधानी के लिए कहा है, अपने जीवन को पवित्र निर्मल बनावे। कहीं भी दोष दृष्टि हो तो वो ठीक नहीं है। बहुत बढ़िया बात तो वासुदेव सर्व ये है, साथ साथ भगवान है, श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जोग पानी। तो सब संसार सीताराम 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 है, ऐसे जोड़कर सो प्रणाम करता हूँ। तो सीताराम सीताराम दोष कहा है, भगवान है साक्षात, तो जहाँ ये भगवत बुद्धि होती है वहां दोष दृष्टि नहीं होती, और दोष दृष्टि होती है उसमें भगवत बुद्धि नहीं होती। परंतु भगवत बुद्धि करते हुए भी अपने अभिमान के कारण और पूरी जानकारी न होने के कारण दोष दृष्टि हो जाती है। तो दोष दृष्टि हो उसको दूर करने के लिए अपने पूरा जानते नहीं भाई, जहां हमारे को किसी में दोष दिखे तो अपनी कमजोरी स्वीकार करना सबको अधिकार है, पर दूसरे में दोषारोपण करना किसी का ही अधिकार नहीं है। तेरे भाव जो करो भलो बुरो संसार, तेरे मतलब क्या है, तुम्हारे कोई ऐसा नहीं बताया कि तुम्हारे को ऐसा करना पड़ेगा ऐसा नहीं करना पड़ेगा। नारायण को बैठ के अपने भगवान को हाथ अपने ठीक तरह से करो, तो इसी आवश्यकता है और की आवश्यकता नहीं है। इस वास किसी ने दोष दे दोष तो मत करो। अलग दूर जाए ज्यादा दोस्त, उसका संग छोड़ दो, उसका संग मत करो। उसका संग करने से आते हैं संसर्ग जा दोष गुणा भवंती, दोष और गुण संसर्ग जा बताया संबंध से पैदा होते हैं। एक कहानी आती है, एक राजा थे वो गए तीर्थ यात्रा में, तीर्थ यात्रा में गए तो वह कई मुनियों के आश्रम में गए, बैठे बात करी सब करी। एक आश्रम में गए वहां तोता और मैना है, वे भगवान की बातें कर रहे हैं। मुनियों के आश्रम में सुंदर सुंदर बातें, राधे कृष्ण गोविंद ऐसे तोता बोल रहा है। तो राजा को याद आया भी अपने भी साथ में तोता था ना, हमारे साथ रहता था, यहाँ है ना वो लाओ उसको। तो राजाओं के बेगार होती है बेगार, किसी को काम ले जाए तू ले लो ये तू ले लो ये ले जाओ, तो उनको दे दिया ऐसे वो खोज करने से याद करते हैं तोता कहाँ है वो, तो खोज करने से मिला दो लाए। उनको बात लाई उससे पूछे तो वो गाली लगे, इतना लग रहा है ना साथ में जिन लोगों के साथ में तो गाली दे रहे हो, गाली बोले तो तेरे को पता नहीं गुण है दोष है क्या, जैसा सुने वैसे सीख जाए वैसे बोलने लग जाए। तो राजा का बड़ा गुस्सा आया, हमारी फजीती कर दी, हमने बताया हमारे भी तोता है, और वो तो गाली बोलाए, अच्छा बोले राधे कृष्ण गोपी कृष्ण ऐसे भगवान का नाम बोले, तो नाम बोलता नहीं गाली बोलता है। भगवान देखो कि मरना चाहिए, तब वो तोता बोलता है संतों का रहने वाला, अहम मुनि नाम वचनम शुणोमि शुणोत्ययम् वे यवनस्य वाक्यम्, अहम मुनि नाम वचनम शुणोमि, मैं तो ऋषि मुनियों का वचन सुनता हूँ, और शुणोत्ययम् वे यवनस्य वाक्यम्, ये मुसलमानों के साथ रहा बेगार में रहा उनके साथ तो उनकी बातें सुनता है। न शास्य दोषो न च मे गुणो वा, न इसका दोष है न मेरा गुण, हमारे दुगुण दोष हम तो एक ही पक्ष ये तो है एक तरह से, तो इसी का गुण हमारे दोष न शास्य दोष और न मेरे गुण होगा, संसर्ग का दोष गुणा भगवत में संबंध से दोष गुणा थे, इस वास्ते इसका खुद दोष गुण नहीं है तो संसर्ग से है, जैसा संग करे वैसा लगे रंग, तो रंग वैसे ही लग जाए वैसे ही दिखने लग जाए तो वो आ जाता है संसर्ग का संग। इस वास्ते सत्संग से बहुत लाभ होता है, ऐसे ही कुसंग से नुकसान भी बड़ा भारी होता है। विषयी पामर आदमियों का संग वो बड़ा घातक होता है, वो उनसे भी विशेष घातक होगा अगर नास्तिक का संग, जो ईश्वर को नहीं मानते, धर्म को नहीं मानते, परलोक को नहीं मानते, ऐसे पुरुष होते हैं सबसे अत्यधिक पतन करने वाला वो संग होता है। पर लोग कुछ नहीं है, जन्मने के बाद कुछ, मरने के बाद कुछ नहीं, पर लोग को नहीं मानते, संत महात्माओं को नहीं मानते, शास्त्रों को नहीं मानते, वर्ण आश्रम को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, वे नास्तिक कहलाते हैं। तो नास्तिक का संग बहुत खराब, भीतर आस्तिक परमाणु को नष्ट कर देता है। इस तरह से खाने पीने में मदिरा आदि को दोष ज्यादा बताया है, मदिरा का दोष, मांस भक्षण मांस बच्चे मछली आदि अंडा सब निषिद्ध है, परंतु सबसे ज्यादा मदिरा का दोष बताया है। तो मदिरा के दोष में क्या है, जीव जंतु होते हैं उनका ही अर्क निकाला होता है, परंतु उसमें एक बहुत विशेष बात होती है, भीतर जो परमाणु होते हैं ना परमात्मा तत्व के धार्मिक भावनाओं के, वे धार्मिक भावों के परमाणुओं को अंकुरों को नष्ट कर देती है मदिरा, महापातक माना मदिरा, चार बातें महापातक मानी है, खाने पीने में तो मदिरा है, और चोरी में सोना और रतन, इनका जो चोरी करना है ये महापातक है। ऐसे व्यभिचार महापातक है, परंतु गुरु पत्नी गमन करना महापातक है। ऐसे किसी को भी मारना अत्याचार पाप है, परंतु ब्राह्मण को मार देना महापातक माना है। मन जिनके द्वारा दुनिया का हित ज्यादा होता है, उनका नाश करने का पाप बहुत ज्यादा लगता है। तो ये चार महातक महापातक बताए। महापातकों में क्या है, पातकों से अंतकरण अशुद्ध होता है और पुण्य से अंतकरण पवित्र होता है, परंतु मदिरा आदि सेवन से भीतर जो आस्तिक भाव है, श्रद्धा भक्ति है, ईश्वर है, महात्मा है, इनमें जो पूज्य भाव है, वो पूज्य भाव के अंकुर को नाश कर देता है मदिरा। ऐसे ही नास्तिक पुरुष का संग है, उनसे भी ऐसा ही होता है, बड़ा नुकसान होता है। हमारे सज्जन मिले थे, मेरी दृष्टि में बहुत अच्छी आदर दृष्टि से देखता हूं, उनका अब शरीर नहीं रहा। उन्होंने एक बात बताई थी, अपनी भूल की बात बताई थी, जिसमें बताया कि ये परस्ती गमन से आस्तिक भाव का नाश होता है। और अगर मैंने देखा हुआ है, छुट्टी वस्तु हो गया उस जवानी में, तो इससे एक नास्तिक भाव पैदा होता है। परमात्मा की तरफ वृत्ति रहती है, उसमें भीतर अंकुर रहते हैं धर्म के, भगवान के, आस्तिक भाव के, वे अंकुर परमात्मा की प्राप्ति में जाने वाले होते हैं। पाप होता है, वो दोष होता है, वो दोष लगता है, परंतु उसका प्रायश्चित किया जाए, उसका फल भोग लिया जाए तो कट जाता है। परंतु भीतर जो आस्तिक भाव है, वे अंकुर नष्ट हो जाए तो उसकी उन्नति होनी मुश्किल हो जाती है। तो ये जो कुसंग है, वो कुसंग आस्तिक भाव को नाश करता है और उससे ही दोष दृष्टि होती है। हमारे जो अच्छे भाव है, उनमें भावों में कमी आती है नास्तिक का संग करने से। हमारी भावना होगी हम बड़े अच्छे अंचल में, तुम जानते नहीं, हम जानते हैं, ऐसा 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 है, तो भाव में फर्क पड़ जाता है। ये कैसे ऐसा बात है, हम जानते हैं, इससे कहकर कहने से वो दोष दृष्टि हो जाती है। तो ऐसे ऐसे पाप करने से, कुसंग से दोष दृष्टि होती है, सत्संग से गुण दृष्टि हो जाती है। सत्संग करो, सत्संग करने से, जैसे हम गीता में भाव हो जाता है, गीता बड़ी अच्छी चीज है, भागवत अच्छी चीज है, रामायण बड़ी अच्छी चीज है, परंतु कई कई आदमियों के विलक्षण भाव होते हैं। वो भी मैंने सुना है, हम आसाम गए थे तो वहां एक सज्जन मिले थे, बड़ी आस्थे शब्द में कहा कि तुलसी के रामायण के समान कोई खराब ग्रंथ है ही नहीं, सब ने खराब हुई थी, बड़ा आश्चर्य। दुनिया जिसकी महिमा करे, वो सबसे खराब चीज है। दिल्ली में व्याख्यान हो रहा था, उसमें एक व्याख्यान तय कह रहा है कि गीता है वो तो अभिमान से भरी हुई, भगवान कहते मैं ही हूं, जो कुछ मेरे मान लोगे, कोई अभिमान की बात कुछ नहीं होता। अब ये बात सुन ले, सुनो, देखो देखे देखो तो कोई दिख जाए वैसी, भगवान के बेनती ना तपस्या है ना भक्ता है, कदाचन था शुश्रूष की बात चुन समान जो भी सुनी थी, मेरे में दोष भी मत कहना, तो अभिमान ही ना, ये मैं मत मेरा मत अनुसार करते मुक्त हो जाएंगे। भगवान ने ऐसी बातें कही है, वहां भी बड़ी सावधानी का प्रयोग किया भगवान ने। सर्व गुयतम भूयश्नु में परम बच, सर्व गुयतम कहता हूं, ये लोगों के सामने प्रकट करने की नहीं है। ये जो भगवान ने निषेध किया इनको गीता मत कहना, इसका तात्पर्य क्या है? क्या उनका उद्धार भगवान नहीं चाहते, उनका कल्याण नहीं चाहते क्या? क्यों निषेध किया? तो भगवान कहते हैं जिसका अंतकरण अशुद्ध होता है, वो गुणों में दोष दृष्टि ज्यादा करेगा, तो दोष दृष्टि का पतन हो जाएगा। इंद्रता ना तो या न अभक्ता कदाचन अभक्त वो कभी मत कहना न से अशुष हो चिमचो सुनना नहीं चाहे उसको भी नहीं कहना न से मांग योग हुई थी मेरे में दोष दृष्टि करे उनको गीता मत कहना। तो गीता मत कहना कि ये मतलब उनको वंचित रखना ये नहीं, वो जितना भाव रखता है उनसे उल्टा भाव चलेगा तो और दोष नहीं करेगा, दोष दृष्टि करेगा तो और पतन हो जाएगा उसका। इस वास्ते गीता ने बड़ी सावधानी से बातें कही है। ये निराचरण श्रेष्ठ श्रेष्ठ बात बताई, जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं दूसरे भी ऐसे ही आचरण करते हैं, वो श्रेष्ठ पुरुष जिसको आदर दे देते हैं उसको लोग भी आदर देते हैं, तो दूसरों के लोगों के आचरण का भी असर पड़ता है। तो बुद्धि सब खराब हो गई है तो उसको देखता उल्टा है, वो और तरह देखता है, उसकी दृष्टि की एक पुतली ही और तरह हो जाती है, दूसरा देखता उसको करते मैं जानता हूँ बम है पाखंड करते लोगों में छगाई करते ये करते ऐसा आप कह रहे बस, और मैं जानता हूँ जानने वाले क्या है अपनी भावना है। वासुदेव तो वासुदेव सर्वम है, तब तो वो परमात्मा है साक्षात, नहीं तो अलग अलग भाई। चार तरह की वृत्ति बताई है, जो धर्मात्मा पुरुष है उनको देख करके तो प्रसन्नता होनी चाहिए, और पापात्मा है उनको देख कर दया आनी चाहिए। तो ऐसी बात है, कृपा कृपोपेक्षा कृपा करनी चाहिए, दुखी को देख करके कृपा करनी चाहिए। मानो जो कोई पुराने पापों का फल भोग रहा है दुखी है तो उसको नहीं भी पाप है देखो भोग गया पाप हो गया ऐसा ऐसा पाप हो गया, उन पर दया आनी चाहिए। इसका कैसे कैसे दुख कैसे दूर हो, भगवान क्या करे इसका दुख दूर कैसे हो, तो उस पर कृपा होनी चाहिए। और ज्यादा दोस्त उपयोग उदासीन हो जाओ भाई, अपने अपने कहना थे मान थे अलग अलग हो जाओ। कृपा मैत्री कृपोपेक्षा प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा व्यक्त रूपी समझ में भागवत में भक्तों का वर्णन आया है, उसने बताया अर्चायाम एव हरये यह पूजा श्रद्धे हते, श्रद्धा पूर्वक मूर्ति में पूजा की, मूर्ति में साक्षात परमात्मा है यही परमात्मा है ऐसा मान करके जो पूजा करे उसको प्राकृत भक्त का प्राकृत प्राकृत का मतलब प्रकृति अब आरम्भ हुआ है, आरंभ हुआ है उसकी क्या होती है, होता है भगवान की मूर्ति में ही भगवत बुद्धि होती है। न तद भक्तेषु चारणेषु भगवान के भक्तों में भी श्रद्धा नहीं होती औरों में भी नहीं होती केवल ही, तो उसको भी प्राकृत आरंभिक भक्त बताया है। तो ऐसा करना चाहिए, फिर प्रेम मेरती के रूप शंकर के समझ में प्रेम करे जो भजन भगन करने वाले प्रेम करते हैं, और धर्मात्मों से मित्रता सुखियों के साथ मित्रता सुखी है इतने धनी अच्छी बात है, और दुखियों पर कृपा करते हैं दुष्टों को उपेक्षा करते हैं ऐसा करते हैं वो मध्यम मध्य भक्त है, और सब में परमात्मा बुद्धि उत्तम भक्त है। ऐसा वर्णन आता है अलग अलग भक्तों का। तो जो दोष दृष्टि करना है ये अपना नुकसान कर रहा है, वो कैसा है इसका पता नहीं है। किसी में हमारी दोष दृष्टि हो जाए तो देखते हैं कि आदमी खराब है, तो वो तो खराब है कि नहीं है इसमें संदेह है, पर ये खराब है ये वृत्ति तो खराब है ही, हमारी वृत्ति खराब हो ही गई, उसकी उपेक्षा होगी उसका द्वेष होगा उसकी निंदा करेंगे उसकी चर्चा करेंगे घृणा करेंगे तो हमारे में कई दोष आ जाएंगे, उसमें तो एक दोष होने की भी संभावना पता नहीं है, संदेह है कि नहीं है, और हम दोष दृष्टि कर लेंगे तो हमारे तो चार पांच दोष आ जाएंगे, कृपा उपेक्षा हो जाएगी उदासीनता हो जाएगी द्वेष हो जाएगा तटस्थता हो जाएगी निंदा हो जाएगी घृणा हो जाएगी, ऐसे कई दोष हमारे में आ जाते हैं। तो दोष दृष्टि करने से बड़ा नुकसान होता है, मुफ्त में है मुफ्त में पाप हो जाए मुफ्त में, जब कोई अपना मतलब नहीं। पद्म पुराण में एक प्रसंग आया है कि महाराज ऐसा भी कोई पाप है कि जो बिना किए ही लग जाए, अब पाप नहीं करे और पाप लग जाए ऐसा पाप, कभी ऐसा भी होता है उसमें कई बातें बताई है। वैसे दूसरे की जूती हम पहन लेते हैं तो दूसरे की सैया पर हम सो जाते हैं तो दूसरे का कपड़ा हम धारण कर देते हैं तो दूसरे का आश्रय बैठा उसमें रहते हैं तो उनमें भी पाप पुण्यों का आपस में आदान प्रदान होता है, बिना किए भी दोष लग जाता है। ऐसा प्रसंग आया है तो संसारिक है ना, उस जैसे पुरुषों का संग करे तो जैसे जैसी वस्तुओं का संग करे, जैसे स्थान का संग करे उसका भी असर होता है। जैसे अपने यहाँ देखो गीता भवन में सत्संग करो सत्संग बड़ा अच्छा होता है, परंतु गीता भवन की अपेक्षा यहाँ सत्संग करो उसमें विशेष होता है। कहे कि यहाँ परमाणु बड़े अच्छे हैं, यहाँ पुराने बड़े बड़े संत हुए, यहाँ वट वृक्ष था बहुत बड़ा वो चला गया, उस वट वृक्ष के कारण यहाँ सत्संग शुरू हुआ था, ये पक्षी तो पीछे लगाए हमारे सामने ये लगाए हुए वृक्ष है, वो वट वृक्ष पुराना था वो चला गया, वो जहाँ पीपल खड़ा है उस जगह था उसके पीपल लगाया उसके वे बट की जगह ही पीपल लगाया वो तो बहुत बड़ा था, दो तीन आगे पास बाबा जितना पड़ा था, उनकी शाखा है ये है वो जैसे शाखा है वो उनकी है, इसी शाखा है वहां नीचे की शाखा है उसी बट बट की शाखा है, वे नए वृक्ष हो गए वो चला गया। उस वृक्ष के नीचे जगह साफ करते हुए देखा तो किसी संत की धूनी निकली, कोई धूनी वाले बाबा कोई रहते थे, ये जहां गुफा है गंगहनी संत रहते थे उसमें पहले एक कोई बंगाली संत थे शेर जी कहते थे, उन्होंने देखा तो वे जंगल के पत्ते ही खाते गुफा मेरे गंगा जल पीते गुफा ही उस गुफा में रहते थे। तो ऐसे यहाँ पर कई संत हुए भजन ध्यान करने वाले जप करने वाले, तो वो जप करने वाले होते हैं उनके कारण से वहाँ वायुमंडल शुद्ध होता है पवित्र होता है। सिद्ध गया ही पूज्य सिद्ध रहे भी ठोर, शुद्ध महात्मा जहाँ रहे हैं वो जगह भी पूजनीय आदरणीय हो जाती है, उस जगह में भी अच्छे अच्छे परमाणु होते हैं जिससे अगर ही भजन कोई करे तो उसको भजन का बल मिलता है। आप भी जाकर गंगा जी किनारे देखो दिन में इतना प्रदर्शन करके एकांत में गंगा किनारे चले गए भजन करो तो बड़ा मन लगता है बड़ा अच्छा लगता है। गंगा जी हवा आती है उसमें भी ऐसी शक्ति है जो आप भजन को बल देती है। ये उत्तराखंड की भूमि सबकी सब तपो भूमि है, पहले बड़े बड़े राजा महाराजा हुए बड़े बड़े सेठ साहूकार धनी हुए, वो अंत समय में चलो भाई अभी गंगा जी के नाम चलो उत्तराखंड में चलो भजन करेंगे, भजन करने के लिए गए। पांडव भी अपने पोते को राज्य दे करके और वे वीर यात्रा को निकल गए, स्वर्गारोहण पर्व है उसने वो वीर यात्रा, वीर यात्रा के आगे चलते ही रहे बस चलते ही रहे चलते ही रहे, न खाना पीना न सोना न बैठना, चलते चलते गिर जाए खत्म न चल सके, वो वीर संन्यास होता है। ऐसे चलते रहे तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा भाई ये आदमी की जो मौत होती है तो बहुत है, बिना पाप नहीं मार सकती, कोई कोई पाप होता है जिससे ये मारती है। तो ये बात आई तो वो द्रौपदी गिरने लगी, तो महाराज द्रौपदी तो बड़ी पत्नी बड़ा बड़ी तेजस्वी और अयोनी जाती वो तो बेबी है प्रकट होने वाली किसी माँ से पैदा थी नहीं ऐसी थी। कृष्ण एक दोस्त युधिष्ठिर से पूछता है भीमसेन पूछता है कि बात क्या है, वो कहती मैं गिर रही हूँ पतंग उड़ा है, तो क्यों गिर रही है तो दोस्त था उसमें सब पांचों का आदर करते अर्जुन का विशेष आदर करते थे इस कारण से कर रही है। सहदेव गिरने लगा तो भीमसेन ने पूछा महाराज ये सहदेव क्यों गिरता है, अगर सहदेव एक तो ज्योतिषी था पहले बता देते बात ऐसे उड़े ऐसे उड़ी, बड़ा नामी ज्योतिषी था और सुंदर भी था, ये माधुरी पुत्र थे ना वो नकुल और सहदेव अश्विनी कुमार का अवतार है, तो सुंदर बहुत थे देखने में बड़े सुंदर थे। महाराज युधिष्ठिर भीमसेन अर्जुन के बड़े प्यार के पात्र थे, बच्चे थे छोटे बड़ा प्यार करते थे, तेरे सुंदर से उसका अभिमान था। नकुल कर रहा है, मगर नकुल क्या कि नकुल तलवार के युद्ध में अभिमान रखता था मेरे समान। फिर अर्जुन के नरहर बीबी ने पूछा, महाराज अर्जुन कैसे गिरता है? ये तो भगवान का भक्त है। ये बात है कि अर्जुन की एक प्रतिज्ञा सच्ची नहीं हुई। क्या कि जब वनवास हुआ तब वे वहां से निकले तो अर्जुन जोर से कहा, मैं अकेला आकर के कौरव का नाश करूंगा। तो अकेला नाश कर नहीं सका, इस वास्ते प्रतिज्ञा दूसरों को गिर रहा है। भीम से अर्जुन कहने लगे, महाराज मैं क्यों गिरता हूँ? क्या बात है कि तुम एक तो खाते बहुत थे, एक अभिमान करते थे, अभिमान कि मैं बड़ा सूरवीर हूँ, अभिमान कर गिरते। तो महाराज युधिष्ठिर रह गए, युधिष्ठिर रह गए। तो फिर वहां आया इंद्र का सारथी मातली, वो रथ लेकर आया कि महाराज आप इसी देश से जा सकते हैं स्वर्ग में, आप पधारो। तो ये कहीं कहीं आता कि अंगूठा गल गया था, एक ऐसी बात भी आई है। वहां पर एक कुत्ता साथ में था, देखा तो इधर देखा चढ़ने लगे, तो भाई है जो सी है कुछ कोई नहीं है। तो कहा महाराज पधारो स्वर्ग में, कि स्वर्ग में तो जाऊंगे। कुत्ता साथ में देखा, महाराज कुत्ता पालन वाला नरकों में जाता है, जो कुत्ता का पालन करता है वो भी नरकों में जाता है, कुत्ता स्वर्ग में कैसे जाएगा? कुत्ता स्वर्ग नहीं जाएगा। कर नहीं, क्यों नहीं जाएगा? किसका पुण्य कहा है ऐसा? कहते हैं महाराज ये आप हाथियों को देखो भाई, स्वर्ग है बढ़िया जी बढ़िया चीज है, मतलब आश्रित का त्याग कर दे उसका दंड भी होता है, उसका इतना पाप होता है। वो मेरे साथ आ गया है, अब कोई आश्रय नहीं, बर्फ ही बर्फ चारों तरफ, कोई मनुष्य भी नहीं है ऐसी जगह में, अब बर्फ भी खुद तक कहाँ जाएगा? इस वास्ते इनको अनाश्रित छोड़ अकेला, मैं नहीं जाऊंगा स्वर्ग, नहीं सही तुम्हारा, मैं नहीं जाऊंगा। तो कुत्ता धर्मराज था, परीक्षा करी कि धर्मराज कितने पानी में कैसे गए। तो फिर धर्मराज प्रकट हो गए कि मैंने दो तीन परीक्षा ले ली, तुम उत्तीर्ण हो गए, तुम धर्मात्मा हो। ऐसे चले ऐसे चले तो महाराज वहां आगे ऐसी दुर्गंधी आ रही है, विष्ठा पड़ी है, बलमूत्र पड़ा है, हड्डियां पड़ी है, मांस है, सड़े हुए मांस के गंदा गंदगी आती है, बड़ी विभत्स चीज घृणा चीज है। फिर वो नरक दिखा, नरक नरक में भीम से भी कह रहे हैं मैं नरक में पड़ा हूँ, अर्जुन कहते हैं नकुल सहदेव द्रौपदी कहते हैं हम नरक में पड़े हैं, आप चारों थोड़ा ठहर जाओ, आपके आने से आपकी हवा लगी इससे हमें बड़ी शांति मिली है, तो आप ठहरो। तो ठहरो भाई, इनको शांति मिलती है, अपने क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, जहाँ क्या करना है, इनको शांति मिलती है, मतलब गंदगी बहुत है, गंदगी कोई नहीं। इधर जाएगा तो दुर्योधन स्वर्ग में बैठे वहां, तो इसने देखा और देवताओं की बुद्धि भी दृष्ट होगी, दुर्योधन तो स्वर्ग में बैठा है, हमारे भाई नरक में पड़े, क्या बात है। तब कहा महाराज आपने चालाकी से जो झूठ बोला है ना, इसका ये फल है। अब देखो कहाँ है कि कृति कहाँ तक चलेगा ऐसा हमारे कि यहाँ तक ही। देवता ने कह दिया युधिष्ठिर पूछ ले कि ये गांध कहाँ तक है, वहां तक वहां भी लेगा यहाँ तक आगे लिए। तो इस तरह से अपने किए हुए कर्मों का फल होता है, संग का फल होता है, अभिमान का भी फल होता है, अच्छे गुणों का भी फल होता है, दुर्गुणों का भी फल होता है। तो अपने गुण लीजिए कालू के नहीं छाया में सूर, गुण लीजिए कालू के नहीं छाया में सूर, छाया में सूर नहीं, तो छाया में सूर इस तरह से गुण लीजिए, कहीं जो गुण ग्रहण करो, गुण ग्राही होना चाहिए। और गुणस्तूप है वर्जित दोनों नहीं तो परमात्मा तो में रहो, न गुण दोष है ऐसे ऊंचे उड़ जाओ, गुण दोष दृष्टि यहाँ की है, ऊंचे उड़ जाने पर गुण दोष दोनों रह जाते हैं, उनसे उस गुणातीत हो जाते हैं, तो वह गुण दोष नहीं रहता। तो ये भीतर में जो दोष दृष्टि है दूसरों के प्रति, बिना किए पाप लग जाए, वो संसर्ग से लगता है, जूते से, कपड़े से, आसन से, सैया से, ऐसे ही दूसरों की निंदा करने से पाप लग जाता है। जिसकी निंदा करते हो उसकी विष्ठा खाने के समान है। बड़ी खराब चीज है। इस बात से कहा है कि मैल उठावे सुत को माता, मैल उठावे सुत को माता, जहर लाए ठीकरी जो ठीकरी जो मैल उठावे, उमर खल मुख होते उठावे, माता ते पिए मंद निंदा करने वाले तो जब माता मतलब मरती आया श्लोक आया सही। और निंदकस्त तो सोचे भया वो तो मल को दूर करते हैं ठीकरी आदि लेकर, और निंदा करने तो विष्ठा को चाट करके साफ कर देता है। तो निंदा से अधिक निंदकस्त उपकार तो मात्र तो अधिकम मिले मलम हरती हस्ता निंदकस्त जी भया ऐसा सो भूल। तो निंद के उपकार मातृ तो अधिक उन्दू निंद का निंदक का उपकार तो माँ से अधिक मानना चाहिए। माँ है वो मैला उठाती है तो हाथ से चीज ले उठाती है, ये जीभ से उठा कर साफ कर दे कितना अच्छा है। तो दूसरे निंदा करना मैला भक्षण करना है, इस वास्ते निंदा नहीं करी। तो निंदा क्या वही तो है दोष दृष्टि और क्या चीज है, ये मुफ्त में पाप लगता है। निंदा करने से हमने किया नहीं पाप उनका ही, इस वास्ते संतों के पद में आता है कौन कुकर्म किए नहीं मैंने, और जो गए भूल सो लिए उधारे, उनकी निंदा करके उनके गौन कर वहां से ले लिया, जो गए भूल सो लिए उधारे, ऐसी खेप भरी रच पच गए चकित बने लख के बिरजारे। ये बंजारे होते हैं लाता थे पहली माल तो उनको माल से वो खेप करने खेप एक खेप आई दो खेप आई पचास साठ बैल उनकी एक खेप आई ऐसे। तो कहते ऐसा माल भरा मैंने कोई कुकर मैंने छोड़ा नहीं, और जो गए भूल सो निंदा करके उधर से ले लिया उधार ले लिया और पे दूर होकर ले लिया, जो गए भूल सो लिए उधारे, ऐसी खेप भरी रच पच गए चकित बड़े लगे बढ़ जाने चकित हो गए वाह भाई माल तो खूब बड़ा है। ऐसे संतों को थोड़े से दोष भी बड़े भारी दिए होते हैं। ऐसे मौसम कौन कुटिल खल कामे क्यों महाराज के जिन तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक भगवान की बूली हो जाए उसमें कहते ये बड़ा नमक हरा भी मैं जिसने शरीर दिया सत्संग दिया सब तरह से ठीक दिया उस भगवान को तुम भूल गया, ऐसा नमक हरामी है तो कौन सा पाप मैंने किया सब पाप हो गए इसने ऐसे बताया। अन्यथा संत महात्मा अन्यथा प्रतिपद्य थे किंते न कृपम पापम तोरे ना पाप हारिना है तो आत्मा ओन तरह ओन तरह का उस आत्मघाती ने क्या नहीं पाप किया। तो वास्तव में तात्विक बातों को समझ कर चलना चाहिए। तो भाई दोस्तों से सावधान रहो कुसंग से सावधान रहो, सत्संग मिले तो बड़ी भारी लाभ की बात है, ना मिले तो कुसंग से तो बचो। तो वो तोता बोलता है कि महाराज अहम ममी नाम वचन सुनोगी और सुनो तेजंग में यवनस्य वाक्यम नशा से दोष हो और नशने गुणों मेरा गुण इनका दोष हो रही है ये संसर्ग संसर्ग करे उसके अंदर होता है। तो संग से आदमी का बहुत सुधार और पतन कुसंग से पतन होता है, सत्संग से मुफ्त उद्धार होता है स्वाभाविक उद्धार होता है। गंगा जी में आपने देखा है ना गंगा जी के किनारे बड़े गोल गोल पत्थर गोल गोल गंगा जी में गोल गोल पत्थर गंगा जी और लहर लगती है बड़े सुहावने लगे होते ऐसे गोल घर में नहीं होते ऐसे घर होते हैं और ले जाते हैं शहर जाते हैं लोग छोरा छोरी उठार ले जाते हैं हम तो खुद ले जाते हैं कभी कभी आ जाते देख रहे बजे भाई पत्थर देख रहे मजा दिखता है सुहावना हो जाते हैं। वो कारण क्या है वो गंगा जी के पड़े रहते हैं ना तो जो गंगा जी के प्रवाह में लुड़ लुड़ करके गोल हो जाते हैं। गंगा जी के रेता है नहीं ये रेता पत्थरों का है पत्थर आपने टकटा टकरा करके जो गिरता वो रेता है करना बहुत रहता है दूसरा ऐसे करना नहीं होता है ये कब कर है क्योंकि पत्थरों का है पत्थरों को जब टकरा टकरा गए तो लाखों वर्षों से गंगा बह रही है उसमें वे टकरा टकर गोल हो जाए। मैंने एक दिन कह दिया था जोधपुर चातर पास का यहाँ से जाना छेड़ देंगे, सत्संग सुना दो कुछ देर जाओ, छेड़ देंगे तो अंत तक सुनाते ही जाओ, सुनाते ही जाओ। तो मैंने कहा भाई आप जो ऐसे हो क्या बताओ, हमारी ऐसी दोष दृष्टि हो गई, वो नहीं करनी चाहिए पर होगी, मैंने कह भी दिया आप ऐसे हो तो पत्थर पर हो गंगा जी की सब्जी। बरसों सत्संग करे सुधार करे नहीं ठीक तरह से दिन मुंह दिन मुक्त हो जाए। हमारा जैसा विचार है इस साल हम सबके सब जीवन मुक्त हो सकते हैं, तत्वज्ञ हो सकते हैं, ज्ञानी हो सकते हैं, सब करते ही नहीं। अगर नहीं करते तो पत्थर सोरे कुछ काम करता है, अगर तो पढ़े नहीं आप बोल जाए गंगा जी किनारे यहाँ मेरे सोने का काम पड़ा है। पहले आपने देखा होगा तो आ जाता खूब रहता ऊंचा ऊंचा, वो बाद में आ जाता फिर होते गिरती नीचे आ जाए गंगा जी ऊपर जा रेता, उस रेतों को ऐसे करके वही सो गए हम गंगा जी के किनारे। रात्रि सोते होते तो गंगा जी के तो हर 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 एक शब्द अलग होता है, और एक शब्द गंगा जी के किनारे सोने से पता लगता है खड़ खड़ पत्थर लुटते है ना उनकी आवाज आती है, तो दूर से यहाँ पर टकराते 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 अभी लाखों वर्षों से टकरावे तो गोल ऐसा सुंदर सुंदर बन जाता है गंगा से भरा हुआ सुंदर सुंदर। तो सत्संग में रहते रहते आदमी सुंदर बन जाता है, अपना उद्योग कुछ नहीं करे, क्या उद्योग करते हैं पत्थर, उद्योग करे तो महाराज बहुत विलक्षण दे ले, संत बन जाए, महात्मा बन जाए, तत्व के बना जीवन मुक्त दुनिया का उद्धार करने वाला बन जाए, अगर वो चीज ले ठीक तरह से हमें तो समालूम होता है और मन आती है कि सब जीवन मुक्त हो सके, तत्व की हो सकते हैं असल जिंदगी महिमा संसार में है, शास्त्रों में जिंदगी महिमा लिखी है, ऐसे तत्व भी हो सकते हैं। ये सत्संग करने वाले मामूली नहीं है, ये मामूली दिखते हैं। राजाओं की सभा में कोई जावे तो उनको कुर्सी मिलती है तो वहां बड़े आदमी माने जाते हैं कि उनको राजा कुर्सी मिलती है, ऐसे आज उनको मामूली मानते हैं कोई नहीं। पर तो भगवान के दरबार में ये लखपति है करोड़ दूसरा लाख नाम लिया है कितना काम किया है, हमारे सज्जन उन्होंने चार अवर से ऊपर नाम लिया था, कैसे नाम लेने वाले हैं सज्जन। तो ऐसे लखपति यहाँ तो साधारण ठाकुर दरबार में वहां कुर्सी मिलेगी, जो भजन किया है तब तो प्राप्त किया है उनको वहां आदर होगा, यहाँ क्या पता लगे, यहाँ तो साधारण आदमी राम 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 करता है देख ले रह गया, मामूली बात है, मामूली नहीं है, बहुत बड़े भागी है। एक बार कुरुक्षेत्र गए थे हम लोग, कुरुक्षेत्र ग्रहण था सूर्य का, ग्रहण होता ग्रहण में स्नान करने का बहुत महत्व है, तो हम गए थे हमारे साथ नरनाथ जी महाराज पंडित जी थे और कई आदमी थे, तो वो आदमी आए महाराज और ये कपड़ा भी चल लाठी में कपड़ा लटका लिया लेठी लिया दिया गाँव के बिल्कुल आदमी तो आए वही ठहर गए कहीं लट्ठी पर गए कहीं पसाव कर लिया और ग्रहण का स्नान कर करके बस रवाने हो गए। उन लोगों ने देखा तो मैंने कहा कि आप इनको साधारण मानुष समझते हैं, मामूली आदमी है, मामूली नहीं है, ऐसी ठंडी में सर्दी थी ठंडी में घरों को छोड़कर और नहाने के लिए यहाँ आए हैं कि वे कुरुक्षेत्र में स्नान करेंगे ग्रहण के समय, तो इनकी भावना कितनी ऊंची है, इन भावना की तरफ देखो, मनुष्य की सिद्धि क्या है, यो ये श्रद्धा सहसा जैसी श्रद्धा है भावना उसी का मन का स्वरूप है, तो कितनी ऊंची भावना है अच्छी भावना जिससे ये आए हैं। तो नरनाथ जी महाराज कहने लगे महाराज हम तो बड़ी घृणा होती है, हमारा भाव बदल गया, एक मुसाफ ना पर हमारे दोस्त सी हो रही थी तो हमारा भाव बदल गया। तो भाजपा वो बात वही कह भाई सज्जन वही है और वही है स्नान वही है और एक बात बदल गया, इसलिए सत्संग करने वाले हैं ये विचित्र बात है। मेरे कभी कभी आती है मन में ये बात याद आ जाए भूल जाते हैं। हम अगर हरेक गांव में जाकर निगाह करें कि इस गांव में जो भले भले आदमी हो उनका हम दर्शन करेंगे, कौन कौन भले आदमी है, तो हम पहचान सकेंगे नहीं और कर सकेंगे नहीं। अगर सत्संग में जाओ तो गांव में भले भले आदमी चुने आए, या कहीं से आए कोई भी, सत्संग की दृष्टि से महाराज बैसाख में स्नान करने के लिए, गंगा जी में स्नान करने के लिए, सत्संग सुनने के लिए, ऐसे गांव से चुने चुने आदमी आए, तो एक जगह कितना को दर्शन हो जाए बताओ। सत्संग करने वाले, भजन ध्यान करने वाले, गंगा स्नान करने वाले, एक साथ दर्शन कहाँ पड़ा है? यहाँ जाओ कोई दर्शन इतना हो जाएगा? किसी गांव में जाओ, कितने गांव से छम छम कर रहे हैं। उस तुलना में महाराज कई अच्छे आदमी तो पीछे रह गए हैं, क्यों गिरफ्तार नाना जन जाला तेरा विशाला सब कैसे जा रहा, घर का धंधा कही रहता है, तो वे तो रहे आए हैं, वो अच्छे अच्छे आए हैं, अच्छे से पीछे भी रह गए। कैसे गांव में भले भले आदमी है वे सुन में आते हैं, तो यहाँ गंगा जी आकर हम लोग दर्शन भी करें इनके, तो कितनी भाग्य की बात है। परंतु दोस्त ऋषि करेंगे तो दर्शन क्या करेंगे, कहते वो सत्संग वगैरह करते, ये सत्संग ही ऐसा करते हैं। मैं ये कहानी कहा करता हूं, एक माँ मर गई, मार बार में रहने वाले की बूढ़ी माँ मर गई, तो बड़े बड़े बेटा थे और सब गए काम करो भाई, माँ है उसको शरीर शांत हो गया, तभी से अपना ठीक तरह से साधो भोजन को, तो एक भाई था वो विशेष समझदार, उसको कहा तू ये कर इस माँ के फूल खा दे गंगा से, बारह दिनों में तू जाओ गंगा जी में माँ के फूल पधरा देना। तो वहां चला पैदल आना होता महाराज, 600-700 कोस दूर पे गंगा जी, जो आते आते आधी दूर लगे हैरान हो गया, अब कब पहुंचूंगा, बोल रहे बहुत दूर है। तो वहां से क्या किया कि हड्डियां तो फेंक दी और उसने मीठा पानी भर लिया अपने बर्तन में और पीछा पहुंच गया, कैसा गंगा जी, हाँ माँ गंगा जी घाल दी, देखो ये गंगा जल लाया हूँ, गंगा जल लाया हूँ, लोगों ने देखा तो कहे तो जल्दी नहा, तो वो सीधा साधा थारा जल्दी पहुंच गया, तो बड़े भाई समझा कि ये बीच में आया है, इतना जल्दी गंगा जी जाकर कैसे आ जाए, तो ये बीच में आ गया। तो उसने बोला दूसरे दिन सुबह हुआ तो बोले यार सच्ची बात बता रही है, रात माँ मिली मेरे को और माँ ने कहा कि बेटा मेरे को तो गंगा जी नहीं ले गया है, बीच में डाल करके आ गया, समझा, ऐसे माँ ने कहा तू सच्ची तो बता गंगा जी पहुंचा कि नहीं। फिर बोला मरो माँ ने इधर मरी तो उड़ी जाती नहीं, जितनी दूर इधर आई तो उधर उड़ी जाती, ठेठ गंगा जी पहुंच जाती पहुंची तो आई या आज दूर मैं पहुंचा लिया क्या तो ठीक हो गया है, सत्संग करना ऐसा करे ये ऐसा करे, और उन भी मार क्यों भरे इस तरफ कि देखो ऐसा करने वाले सत्संग करते हैं, देखो ऐसा होते हैं सत्संग करते हैं, यू कहो तो क्या ज्यादा खर्चा लगता है, बात तो वही है ना, अगर वो सत्संग करने वाला ऐसा करते हैं या सत्संग ऐसा करते हैं, और ऐसा करने वाले भी सत्संग करते हैं, ऐसा करने वाले गंगा जी नहाते हैं, ऐसा करने वाले गीता का पाठ करते हैं, ऐसे करने वाले देखो यहाँ तपस्या करते हैं, ऐसा करते ऐसे भाव करो तो गंगा जी इधर माँ जी इधर आ जा रही शेर, तो ठेर गंगा जी पहुंचे माँ आप उच्च ऋषि मत करो, अंदर था कृपा रखो कि भाई इनमें गलतियां हैं, ये गलतियां और गलतियां कितनी तो सत्संग करते हैं, कितनी गलती गंगा जल पीते हैं, गंगा जी नहाते हैं दो बल तीन बल गंगा जी नहाते हैं और गंगा जी किनारे रहते हैं, कितना संयम है, कितना सत्संग सुनते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, गीता का पाठ करते हैं। अब ये देखो तो आप क्या अर्ज है कि गीता पाठ करते हैं सत्संग करते हैं उनमें ये गलती है उनका ये गलती है, तो गलती की मुख्यता क्यों करो, कृपा करो इसकी मुख्यता करो नहीं, तो माँ इधर मरी तो ये भी सत्संग करने वाले है, गंगा स्नान करने वाले, ऐसे आप भाव लिया रखो तो कितना अंतकरण शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए। भाई ये है, भूलन तो सब में होती है, इनमें होती है, परंतु फिर भी सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, मौन रखते हैं, संयम रखते हैं, इन गुणों की तरफ देखो तो फिर दोष दृष्टि नहीं होगी। नहीं दोष दृष्टि करो फिर सत्संग करने वाला भी ये होगा, उनमें भी ये होगा, उनमें भी ये होगा, तो महाराज कहीं गुण मिलेगा ही नहीं। दोष दृष्टि करोगे तो गुण कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि सुनो पात मायाकृत गुण और दोष अनेक अनेक है, मायाकृत उसमें दिखेगा तो गुण या उभय देखिए देखिए सॉरी अपना सब देखो मत। तो ये दोष दृष्टि है बहुत खतरनाक है, बिना मतलब पाप लग जाते, हमारे कुछ भी फायदा नहीं। पाप करे, हत्या करे, ठगी करे तो कुछ रुपया मिले, कुछ चीज तो मिल जाए, ऐसा पाप मिला कुछ नहीं और पाप कर दिया, मुफ्त में कितना नुकसान कर दिया, अपना अंतकरण मेला कर दिया। अंतकरण शुद्ध होना चाहिए, जिसमें जैसे बाजार में साफ करने वाले के बाजार पड़ा, उसमें वो झाड़ू वो लेकर के तो इस बाजार से वहां तक गया, जितने मेला भर गया इसमें इतना सारा देकर था, ऐसे जहां जाओ उसे थोड़ा ये बोलते उसमें ये गलती हुई, उसमें ये श्लोक भूल गए, इसमें ये अर्थ ठीक नहीं गया, ये अच्छा नहीं गया, अब जहां जाओ मेला इकट्ठा कर ले सुनिया, ऐसा हाँ सुनिया हमें क्यों का व्याख्यान सुनिया, उस देखा हम क्या क्या सुनाया, ये भूल कर दी ये गलती कर दी। तो बाजार में यही चीज सिवा दूसरी चीज थी नहीं, बाजार में जो सब है पर वो मैला पड़ गया है उनको उठा है, अब वो स्वभाव है तो अपने ऐसा नहीं करना, ये दोष रहती है। तो मैला क्यों उठाओ, अच्छी बात उठाओ, अच्छा संग करो, गंगा जी पर आए हैं हम तो गंगा जी स्नान करते हैं, गंगा जल पिए हुए वृक्षों की छाया में, गंगा जल से धुली हुई रेणुका में वो आसन लगाया बैठे हैं, और ये वृक्ष कितने अच्छे हैं, एक बार फूल घाल देने से कल्याण हो जाए, प्रति वर्ष फूल गंगा जी में जाते हैं इनके हरि वर्ष में फूल प्रति गंगा जी में जावे तो कितना गंगा जी फूल वाले वाला, और गंगा जल पिए नीचे से पिए गंगा जल है हृदय है तीर्थवासी है। गोपिका ने कहा है वहां कभी तुम जमुना जी किनारे हो तो बताओ लाला कहा मैं ये बताओ, तुम तीर्थवासी हो दूसरी बोल पे सच्चे बोलते हो, तो तीर्थवासी पवित्र होते हैं, तो ये 30 बार आप तो कभी आते हो कभी जाते हो, ये तो है जो कि जहा गंगा जी किनारे समझे गंगा जल पीते हैं पत्ते फूल गंगा जी जाते हैं, ऐसा की छाया है गंगा जल का शहरों का बिछी हुई है, गंगा जल पीने को है, गंगा जी देखने को सामने मिलती है, उत्तराखंड की तपोभूमि है, ये हिमालय की उपत्यका है आदित्य का, हिमाचल के पास की भूमि है, ये कितनी पवित्र है उसमें आ गए, ये कोई भगवान की विशेष कृपा होती है, नहीं तो ऐसा मौका कोई पैसों से मिलता है, कोई पैसे लगा कर लाखों रुपया दे खर्च कर गई ऐसा मौका प्राप्त कर सकता है क्या, क्या करेगा बेचारा, रिजल्ट थोड़ी चीज मिलती है, मिलती है भगवान की कृपा से मुफ्त में, कस्तूरी महंगे मोल की हरे के पास नहीं मिलती, जंगली के पास मिल जा, जंगली के पास मिल जा, और बृहस्पति को नहीं मिले ऐसी बात, तो ये सत्संग ऐसा हो जाए और सब इसमें आकर फिर दोष दृष्टि करे, अरे भाई दोष दृष्टि मत करो, सब में अच्छा भाव भगवान है, सब भगवान आए हो किस रूप से अन्याय रूप रूप आए वैष्णव प्रवैष्णव, तो कैसे मैंने वो पाप करता है, अन्याय करता है, झूठ करता है, कपट करता है, जहां सब बेईमानी करता है, कैसे करता है, ये भगवान के लाड में लड़का है, जिसके आप लाड लड़के ज्यादा कर रहे माँ बाप वो थोड़ा बिगड़ जाता है, तो बिगड़े हुए भगवान ने लाड ज्यादा किया इस वजह से बिगड़ गया, है तो भगवान के ना, भगवान के है, बड़े घरों के लड़के हैं मेरे घराने के ज्यादा प्यार किया जो हो जाता है, ऐसा देखो तो क्या हाल दिया बोला, तो भगवान के बोला भगवान के प्यारे हैं, तो और भगवान स्वयं ऐसे वो भगवान ऐसा कर कहते हैं अरे भगवान ने लीला कलयुग की करे तो कलयुग की लीला करे सरस्वती कैसे करे जैसा मौका वैसी लीला करे तो भगवान ने ऐसी लीला करने कलयुग की लीला करने वाह महाराज वाह आपने बहुत बढ़िया ऐसी लीला करते तो इसमें आप तरह तरह से भगवत बुद्धि कर सकते हो गुण बुद्धि कर सकते हो सत्संग नाम जप करते हैं गीता पाठ करते हैं तो इन शुभ गुणों को लेकर के वो बात बताओगे तो गीता पाठ करते हैं ऐसे आदमी तो झूठ कपड़े करते हैं देखो गंगा जल का स्नान करते हैं ये भी सत्संग में रहते हैं ऐसे दोनों एक ही बात है माँ इधर जाओ चाहे उधर जाओ उधर ठेठ गंगा जी ठेठ गंगा जी पास वही रखो बात एक ही है दोनों में मुख्य बात बढ़ा लो अपना लाभवानी हो जाएगी इस वजह से सब भाई अपने गुण बुद्धि करो कितनी बढ़िया बात है आजकल के जमाने में कलयुग में जहाँ महान पतन का ही प्रवास आ रहा है जोर से ऐसे पतन के समय भी यहाँ आते हैं सत्संग करते हैं खराब खाना पीना है अशुद्ध खाना पीना अशुद्धि बर्ताव महाराज राम 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 कितनी अपवित्रता हो रही है अरियाल गंगा जी किनारा खूब ऐसे मोरे शेर जी थे उस समय हम तो यही भोजन करते थे भाई ये माताएं किनारे में बैठ जाती सब अरे वही भोजन करते हमने ऐसी बढ़िया बात है भाई लोग तो जल्दी आ जाते हैं तेरे को श्रोणी में तो सत्संग करते वो रसोई भरा भरा कर लिया हमने अब गंगा जी किनारे बैठ गए कभी कभी शेर जी बनाते खिचड़ी बना दो शेर जी अपनी तरफ से एक दिन प्रसाद बनाओ तो खूब खिचड़ी बनाते वो खिचड़ी में नमक ऊपर नहीं दो नमक नहीं खिचड़ी में नमक नहीं और घी डाल दो खिचड़ी में साढ़े ग्यारह मन की खिचड़ी बनती है सब पाओ सुबह भी पाओ देर शाम की बनते इतने स्वादिष्ट होते खिचड़ी ठंडे हो जाती बड़ी स्वादिष्ट पाते थे कोई काम करना ज्यादा कोई नमक ले लो क्या नमक किसी स्वाद चाहिए तो नमक जब नमक और नहीं तो वो खीरे खाया तो मस्ती से यार शेर जी रहती जल्दी तो शादी का पत्तर ले ली पत्तर में खिचड़ी परोस दी खिचड़ी है गर्म गर्म में रखे से पावे लेकर गंगा जी मई पर गंगा जी जल्दी ठंडी हो जाए
कभी कभी
महाराज जी लेट हो जाती हाँ।
लेट
तो पर्चा
लिख लिख करके
था
सेठ जी वो खिचड़ी कब बनेगी वो आपके खिचड़ी
जल्दी करो जाओ अब बड़ा चाहे हाँ वो लोग जाने वाले कहते हम चले जाएंगे पर नहीं हम पावे लोग रहते हैं यहाँ पर जल्दी बनाओ ऐसे खिचड़ी बनती सब पाओ रोज कोई रसोई नहीं बना बना सब आओ समझ बनती तो ये बात ही भाई अब घाटा तब ही जानिए करे पुरानी बात के समझे घाटा पड़ गया भाई पहले ऐसी ऐसी बात ही है हमारे घाटा हो गया क्या करे शरण जी बोले पढ़ने से वो दो चार कोई संत आ गए वो बोले आज हम धनी हैं हमारे कई संत आए हुए कई व्याख्यान करे आज हम धनवान आज हमारा पक्ष ऐसा ऐसे आ जाए तो हम धनी बन जाए नहीं तो गरीब हो जाए कहते हैं भाई हमारे तो संतों का काल पड़ गया क्या करें ये फसल आई नहीं क्या करें कहाँ सुना हमें अब आ जाए संत महात्मा बस फिर धनी हो जाए हम तो भाई यहाँ आ गए ये धन है ये बड़े भाई धनी है बड़े पुरुष है उनके संग होता है उनके दर्शन होता है बोलो कितनी बढ़िया बात है उनका दर्शन करते हैं गंगा जी पर स्नान करते हैं कोई आसमान करता है दिन में यहाँ छुट्टी से भोजन करने के बाद तो वृक्ष से लोटा भर भर के भर दे गया कोई जो वो है कोई कीर्तन करे है कोई गीता का पाठ करे अपना वृक्ष यहाँ जंगल में से शेर जी भी आते चलो भाई जंगल में घोर जंगल में देखो बैराग में चले बैराग तीन जाकर बैठ जाते मेरे दिन तो खाते मेरे पत्ता पड़ा है पत्थर पड़े है यहाँ पे संतोष भी होता चलती हो बड़ी आश्चर्य की बात है। अरे भी संतोष नहीं, चलो मन में प्रवेश करते तो कहते हैं अब क्या प्रवेश हो रहा है, बैराग में प्रवेश हो रहा है, बैराग में जा रहे या कई वृक्ष है वहां ठीक छाया है, 15-20-50-100 आदमी है जल्दी बैठे, जो ज्यादा शौक हो गया अपना अपना भवन करे, ऐसी सत्संग होती थी जंगल में खूब मोल से खरगोश यार गोल सारा। तो भगवान की कृपा हुई है, भगवान ज्यादा कृपा करते ना, जो जगह दीन दयाल राघव दीन दयाल राघव जगह तो साधु संगति पाई है तो सत्संग मिलती है, भगवान की चर्चा मिलती है। मेरा सुधाम प्रसंगात मम वीर संविदो भवन प्रेरित कर रसायना कथा, सुधाम प्रसंगात शेष पुरुषों का मेल हो तो क्या होता है, ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, मूर से मिलने का मुख्य जो था अपना बाजार अलग अलग है। सुशाम प्रसंगात मम वीर संविदो श्रेष्ठ पुरुषा इकट्ठे होता है, वह भगवान कहते हैं मेरे प्रभाव की कथाएं होती हुई तत्जोषणात, उन कथाओं के सुनने मात्र तत्जोषणात आंसू अपवर्ग वर्त में श्रद्धा रफल भक्ति, भगवान में श्रद्धा रति प्रीति भक्ति पैदा हो जाती क्रम से, सुनते 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 भी हो जाते, धुंधकारी की मुक्ति होगी। ये सुनना भी बड़ा मामूली चीज है, अक्षर जी सुनाते थे सुनाते रहे, एक ध्यान में 3 घंटा लगता है, सगुण दोनों निगुण करूँ साकार का निराकार का, हाँ मुझे से बैठ कर कोई आया कोई गया कोई नींद दिख रहा है कोई उठ गया है, वो तो अपने कहते ही सुन रहे बार सुने, वो तो गंगा जी का प्रवाह चल ही रहा, अब गंगा जी को स्नान करे न करे आसन करे न करे मर्जी है, गंगा जी का प्रवाह चलते आज भी अपने को मौका मिला है तो हमें बहुत आनंद आता है, जहाँ पुरानी बात याद आता है गंगा जी का किनारा गंगा जी का दर्शन बहुत बढ़िया बात है। तो सुना दे भाई को सुना दे।